हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। सुनैना की बातें सुनकर आदित्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शांत होकर बात समझी और पाया कि सुनैना पूरी तरह गलत नहीं और न ही वो पूरी तरह सही था। इसलिए उसने सुनैना का हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में देखा और बोला, देखो सुनैना, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे ये बात छिपाना चाहता हूँ, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, ये बातें मुझे बहुत तकलीफ देती हैं, इसीलिए मैं इनसे बचता हूँ। ऐसी बात होने पर मुझे अजीब सा लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, कुछ समझ नहीं आता और बस ड्रिंक करने का मन करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने खुद को ऐसा बना लिया है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये सब सहने के लिए ड्रिंक की जरूरत है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। मेरी तरफ देखो आदित्य, मेरी आंखों में देखो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें इतनी तकलीफ में देखकर मुझे उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन अगर तुम इसे अपने अंदर रखोगे तो ये तकलीफ बढ़ती ही जाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहती। इसलिए बताओ मुझे, मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द, सारी तकलीफें बांटना चाहती हूँ। सुनैना ने आदित्य का हाथ कसकर पकड़ा, उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आदित्य ने हल्के से सिर हिलाया और कुछ सोचते हुए बोला, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा सुनैना, और वैसे भी तुम्हें याद है उस दिन जब तुमने इस बारे में पूछा था, तब भी मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन फिर अक्षत आ गया था और उसके बाद तुमने कैसा रिएक्ट किया था, उसे देखकर तुम्हें पता है मुझे कितना गुस्सा आया था। अक्षत का नाम याद आते ही आदित्य ने एकदम से शिकायत की जो वो उस दिन नहीं कर पाया था। अरे अरे, ये अक्षत कहाँ आ गया बीच में, और वैसे भी उस दिन तो तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया था, और वैसे भी अक्षत वो तो बस मेरा फेवरेट एक्टर है और कुछ नहीं। अब तुम सोचो, जिसे तुम पसंद करते हो उसे सामने देखोगे तो किस तरह का रिएक्ट करोगे। अपनी शादी के वक्त कैसा रिएक्ट किया था मैंने, बताओ। आई थिंक कोई भी रिएक्ट नहीं, क्योंकि मैं तो तुम्हें ही सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ ना। लेकिन तुम इस तरह से एक्साइटेड मत हुआ करो किसी और को देखकर, स्पेशली उस अक्षत को। तुम्हें नहीं पता मुझे कितना गुस्सा आया था उस दिन और मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया। आदित्य ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर शिकायत करते हुए कहा। सुनैना ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, ओ माय बेबी, बट आदित्य, अभी इस बात का टॉपिक मत बदलो और मुझे चुपचाप बताओ कि जब तुम्हारी मॉम जिंदा हैं तो फिर तुम कभी उनके बारे में बात क्यों नहीं करते। अपनी माँ का जिक्र होते ही आदित्य के चेहरे के भाव एकदम कठोर हो गए और वो फिर से गुस्से में नजर आने लगा, लेकिन फिर भी उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, वो इसलिए क्योंकि वो औरत ही मेरे डैड की डेथ की वजह है, और तुम्हें पता है वो औरत मेरी माँ कहलाने के लायक नहीं है। उसने बस मुझे पैदा किया है, उसके बाद से उसने कभी भी मुझसे कोई मतलब नहीं रखा, कोई लगाव नहीं है मुझसे, अपनी सगी औलाद से, और मुझे तो लगता भी नहीं वो मुझे अपना बेटा मानती है, तो फिर मैं क्यों उसे अपनी माँ कहूँ, और वैसे भी मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। आदित्य ने बहुत गुस्से में दांत पीसते हुए ये बात बोली। जब वो गुस्से में या टेंशन में होता है तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसका हाथ पैर कांपने लगता है और उसके पूरे शरीर पर पसीना आने लगता है। सुनैना ने ये बात नोटिस की और उसे शांत करने के लिए उसकी पीठ पर हाथ फेरा और उसे अपने गले से लगा लिया। कुछ देर तक गले लगाकर बैठने के बाद वो उससे थोड़ा सा दूर हुई, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उसने उसके दोनों हाथ पकड़े और उसके एकदम करीब बैठ गई। रिलैक्स आदित्य, रिलैक्स, तुम ये कर सकते हो और ये इतना भी मुश्किल नहीं है। आगे बताओ, लेकिन तुमने ये बात कैसे कही कि वो तुम्हारे डैड की मौत की वजह है, जबकि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट हुआ था 2 साल पहले, और तुम्हारी मॉम और उनका डाइवोर्स तो शायद उससे भी पहले हुआ है, तो फिर। सुनैना ने कन्फ्यूजन से ये सारे सवाल किए। आदित्य ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, देखो सुनैना, वो औरत, मेरे डैड उससे बहुत प्यार करते थे और वो उसे छोड़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन वो औरत, उसने कभी भी मेरे डैड से प्यार नहीं किया, वो बस उनके पैसे और प्रॉपर्टी चाहती थी, इसीलिए उसने उनसे शादी की। लेकिन शादी के बाद जब वो प्रेग्नेंट हो गई और मैं पैदा हुआ तो इस बात पर उन दोनों की बहुत लड़ाइयाँ होती थीं। डैड ने मुझे ये सब नहीं बताया, उसकी वजह से तुम्हें पता है डैड भी बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगे थे और वो बहुत परेशान रहते थे। उन्हें लगा कि इस सब का मुझ पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए उन्होंने मुझे कॉलेज टाइम में हॉस्टल में शिफ्ट करवा दिया था। और मेरा कॉलेज खत्म होने से पहले ही मुझे पता चला कि डैड एक एक्सीडेंट में मर गए। लेकिन उस वक्त डैड ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और मुझे पता है कि वो इस औरत की वजह से ही ड्रिंक करते थे, क्योंकि तलाक के कुछ ही महीनों बाद उस औरत ने दूसरी शादी कर ली थी। अच्छा, इसलिए तुम्हारे डैड के साथ वहाँ पर तुम्हारी मॉम की कोई भी फोटो नहीं है उस घर में, और तुमने आज तक कभी भी उनके बारे में मुझसे कोई बात नहीं की। लेकिन आदित्य, फिर भी वो तुम्हारी माँ है। और सुनैना उसे समझाने की कोशिश करती हुई बोली, लेकिन आदित्य ने उसे हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा किया और एकदम सीरियस होकर बोला, नहीं सुना, नहीं, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये बात नहीं। इस बात पर मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला, और उस औरत को तो मैं कभी माफ नहीं करूँगा। तुम्हें पता है उसने मुझे और मेरे डैड को कब छोड़ दिया था? जब मैं सिर्फ एक साल का था, बिल्कुल छोटा, और उसे भी मुझ पर बिल्कुल भी प्यार और तरस नहीं आया। तुम्हें पता है डैड ने मुझे अकेले ही पाला पोसा, और कुछ ही दिनों में उस औरत ने दूसरी शादी भी कर ली, क्योंकि उसे डैड ने अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ भी देने से मना कर दिया था, क्योंकि वो ये तलाक नहीं चाहते थे। लेकिन आदित्य, अगर वो तुम्हारे डैड से प्यार भी नहीं करती थी तो फिर उन्होंने ये शादी क्यों की? तुमने एक बार भी उनकी साइड जाने की कोशिश की? हो सकता है उन्होंने प्रेशर में आकर ये शादी की हो, और वो पहले से ही किसी से प्यार करती रही होंगी जिससे उन्होंने बाद में शादी कर ली। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, एक बच्चे की माँ और डाइवोर्सी औरत से कोई भी इतनी जल्दी आसानी से शादी नहीं करता। और तुमने कहा उनकी शादी तलाक के कुछ ही महीनों के अंदर हो गई थी, तो फिर इन सब में पूरी तरह से उनकी गलती कैसे हुई? सुनैना सारी कड़ियों को जोड़कर कुछ समझने की कोशिश करती हुई बोली। लेकिन इतनी बात करते करते आदित्य की हालत काफी खराब हो चुकी थी। वो अब इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहता था, इसलिए उसने सुनैना को खींचकर अपने करीब कर लिया और उसके कंधे पर अपना सिर रखकर आंखें बंद कर लीं। उसके ऐसा करने पर सुनैना एकदम चुप हो गई और उसने आगे कुछ नहीं बोला। उसे अभी भी सारी चीजें क्लियर नहीं हुई थीं, लेकिन फिलहाल आदित्य ही उसकी प्रायोरिटी था। वो उसके पास्ट से ज्यादा उसके फ्यूचर पर ध्यान देना चाहती थी, इसलिए उसने इस बारे में कोई और बात नहीं की। वो आदित्य के बालों में हाथ फेरते हुए बोली, व्हाट हैपेंड आदित्य, आर यू ऑल राइट? नो यू आर नॉट, आई थिंक सब मेरी ही गलती है, आई एम सॉरी, मुझे इतना प्रेशर देकर तुमसे ये सब कुछ नहीं पूछना चाहिए था। लेकिन यकीन मानो आदित्य, तुम अगर ये सब दर्द और किसी के लिए नफरत अपने अंदर रखोगे ना, तो ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही तकलीफ देगा।
सुनैना की इस बात पर आदित्य ने थोड़ा पीछे हटते हुए अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ बहुत प्यार से देखा। फिर उसने उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोला, अरे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है सुनैना, और सच कहूँ तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ शेयर करके मुझे सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों साथ ही कुछ अजीब सा भी लग रहा है, और ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीजें माइंड में आ रही हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं रिलैक्स। आदित्य अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सुनैना ने झुककर उसके होठों पर किस कर लिया। उसे पता था कि उसके इस तरह किस करने और उसकी नज़दीकी से आदित्य का ध्यान हमेशा ही सारी बातें भूलकर उसकी तरफ हो जाता है।
तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं, तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं, कि जब तक मैं जीऊं सिर्फ तेरा इंतजार करूं, तुझे मैं प्यार करूं।
सुनैना भी काफी टाइम से आदित्य से इतनी क्लोज नहीं हुई थी, इसलिए उसका भी मन कर रहा था कि वो इस वक्त सब कुछ भूलकर बस आदित्य की बाहों में खो जाए। इसलिए आदित्य को रेस्टलेस देखकर सुनैना ने बिना कुछ सोचे समझे आदित्य के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगी। उसके इस अचानक किस करने से आदित्य पहले तो एकदम सदमे में चला गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे रियलाइज हुआ कि आंखें बंद करके सुनैना उसे किस कर रही है, लेकिन आदित्य अपनी आंखें खोले हुए उसकी तरफ देख रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने भी सुनैना का साथ देना शुरू कर दिया और किस करते हुए वे दोनों काफी आगे बढ़ गए। सुनैना के हाथ अब आदित्य की शर्ट के अंदर थे, उसकी कमर और पीठ पर।
दिलों की बात नहीं जानते ये सब जुबान वाले, वफा को जुर्म समझते हैं ये सब जहां वाले, अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म बार बार करूं, कि जब तक मैं जीऊँ तेरा इंतजार करूँ, तुझे मैं प्यार करूँ और इतना प्यार करूँ, तुझे मैं प्यार करूँ और इतना प्यार करूँ कि जब तक मैं जीऊँ सिर्फ तेरा इंतजार करूँ, तुझे मैं प्यार करूँ।
और आदित्य के लब भी अब सुनैना के होठों को छोड़कर उसकी पीठ और गर्दन पर हरकत कर रहे थे। सुनैना उसके एकदम करीब आ गई और उसने अपनी बाहों से आदित्य को पूरी तरह से जकड़ लिया था। आदित्य जैसे जैसे उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर अपने प्यार के निशान बना रहा था, सुनैना के मुंह से निकलती हुई मीठी सीसकारी की आवाज उस पूरे कमरे में गूंज रही थी। कुछ ही देर के बाद उन दोनों के बदन पर एक भी कपड़े नहीं थे और वे दोनों वहां स्टडी रूम के सोफे पर थे। सुनैना सोफे पर लेटी हुई थी और आदित्य उसके ऊपर। कुछ देर के बाद आदित्य एकदम उसके ऊपर ही लेट गया और वे दोनों इस वक्त एक कंबल के अंदर थे। सुनैना ने आदित्य की कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेटते हुए उसे कसकर पकड़ लिया और बहुत ही सुकून से अपनी आंखें बंद कर लीं। उन दोनों के बदन एक दूसरे से चिपके हुए थे।
तेरी खुशी न हो शामिल तो फिर खुशी क्या है, तेरे बगैर जो गुजारे वो जिंदगी क्या है, कई सदी तेरे प्यार पे निसार करूं कि जब तक मैं जीऊँ सिर्फ तेरा इंतजार करूं, तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं, तुझे मैं प्यार करूं कि जब तक मैं जीऊँ सिर्फ तेरा इंतजार करूं, तुझे मैं प्यार करूं।
आदित्य ने कुछ पल बाद अपनी आंखें खोलकर बहुत प्यार से सुनैना की तरफ देखा और उसके माथे पर किस किया और फिर उसकी आंखों पर, फिर उसके गाल से होते हुए आदित्य दोबारा से उसके होठों पर किस करने लगा, जिसमें सुनैना भी उसका पूरा साथ दे रही थी। वे दोनों अभी भी एक दूसरे से चिपक कर लेटे हुए थे। इस पल में वे दोनों बस एक दूसरे का साथ चाहते थे और कुछ नहीं, और इस तरह एक दूसरे की नज़दीकी उन्हें बाकी सारी चीज़ों से लड़ने की ताकत देती है और उन्हें इस बात का यकीन होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वे दोनों हमेशा ही इस तरह एक दूसरे के साथ हैं। कुछ देर के बाद वे दोनों उसी तरह स्टडी रूम के सोफे पर ही सो गए। सुनैना साइड हो गई थी और आदित्य उसे कसकर पकड़कर उसके साथ ही लेटा हुआ था। कम ना शा।